सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरमत गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेट करा पेशतर फतेह प्रवान करने। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु बख्शिश कर, तू ओ बुद्ध दे जिस द्वारा मैं ऐसा करां कि तेनू कबूल होवे, ओ कर्म तेनू प्रवान होवे। क्योंकि अज तक मैं जो कीता है उदे नाल ते गल नहीं बनी। मैं किए कर्म अनेक, मैं शब्द है अपने त्यां दी गल, मैं किए कर्म अनेक, बहुत कीते ने कर्म, जिन्हां नूं सारा संसार कहिंदा है धार्मिक कर्म ने, उह ते कीते ने, पर किसे कर्म दे चों प्रभु मिलाप दी सुगंध नहीं आई, किसे कर्म दे चों परमात्मा दे मिलाप दा रस नहीं आया, किसे भी कर्म दे चों परमात्मा दी छाप नहीं मिली, किसे भी कर्म दे चों रब्बी आनंद नहीं आया, परम प्रकाश नहीं आया। ते धर्म दे नाम ते मैं धार्मिक कर्म ते बहुत कीते ने। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दास तो पहले बहुत सोहना खुलासा कीता गयानी बलविंदर सिंह ने, उस तो बाद गयानी हरनाम सिंह जी चाकर। इंज कह लो असी बचपन दे दोस्त हाँ, बहुत छोटे होंदे हां कट्ठे विचरदे रहे, और इत्थे चंगे सुलझे ज्ञानी ने, उत्थे लिखारी ने, जाप साहब दा उन्हें टीका लिखिया, श्रोमणी कमेटी ने छापे। दूसरा ये हिकमत दे भी बड़े सैणे ने, कई गुण परिपूर्ण परमात्मा ने इन्हां नूं दित्ते ने, बहुत सोहणिया विचार आप नूं सरवण करा रहे सन। उसे बने हुए माहौल चो जो गुरु ने ख्याल बख्शिया आप दे सामने रख रहे हैं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्यारे, किस विधि नाल जो तू कर्म कर रहे हैं इहदे नाल ते खेड नहीं बननी। और हर मनुख ने कर्म ते कीते ने और कर रहे हैं। कोई कुरान नू आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई पुरान नू आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई मस्जिद नू आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहे हैं, कोई मंदिर नू आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहे हैं, कोई गुरुद्वारे नू आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहा है। मस्जिद नू आधार बना के कर्म ते बड़े कीते, पर अल्लाह दी कोई खबर कोई नहीं। मंदिर नू आधार बना के कर्म ते बहुत कीते, भगवान दी कोई खबर नहीं है। ते गुरुद्वारे नू आधार बना के, गुरु नू आधार बना के सिख ने कर्म ते बड़े कीते ने, कर रहे है, पर गुरु दा कोई पता कोई नहीं, कुछ भी पता नहीं। गुरु दी छाप मनुख दी जिंदगी दे चो नहीं मिलती, गुरु दी महक मनुख दे विचारां दे चो नहीं मिलती, गुरु दा रस मनुख दे आचरण दे चो नहीं टपकदा, गुरु दी महिमा दा इस दे कर्मां तो नहीं पता चलदा। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, अनेका लफ्ज जो वरते है इतने के गिण भी नहीं सकते, इन्ने की तेरे तारम कर्म जीवन भरो जीवन भर आखिरक धार्मिक मनोकर्म तो कर दई है। मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु अपनी बुद्ध दे मुताबिक ते मैं बहुत कीता, दान भी कीता, ज्ञान भी बड़ा इकट्ठा कीता, कथा कीर्तन भी बड़ी सुनी है और कथा कीर्तन कीता भी बड़ा है, पाठ बहुत सुने है ते पाठ कीता भी बड़ा है, सेवा भी बहुत कीती है, दान भी बड़ा देता है। गुस्ताखी माफ, क्या सीने ते हाथ रख के कह सकते हैं कीते हुए दान ने भगवान मिला देता है, कीती हुई सेवा करके कोई प्रभु दी झलक मिली है, सुने हुए पाठ करके या सुनाए हुए पाठ करके परमात्मा दी कोई महक आई, सुनी हुई कथा करके या कीती हुई कथा करके, सुने हुए कीर्तन करके या सुनाए हुए कीर्तन करके कुछ खबर मिली। अगर चलो हर जगह नहीं तो हम महाराज दी हजूरी च इतनी सच्चाई ते कबूल करन तो संकोच नहीं करना चाहिदा, ना दान करके पता चले है ना ज्ञान करके, ना कथा करके कोई खबर मिली, ना कीर्तन करके, ना सेवा करके कुछ पता चले है, ना पुण्य करके। तो फिर किवें तेरी खबर मिले? जो जो असी कीता इहदे नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। मैं फिर अर्ज करा, कर्म ते धार्मिक यही ने जो कीते जा रहे हैं, पर किसी भी कर्म ने कोई खुदा दी खबर दिती होवे, किसी कर्म ने परमात्मा दी छाप जिंदगी दे छोड़ी होवे, किसी कर्म ने गुरु दी महक पैदा कीती होवे जिंदगी च, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं किए कर्म अनेका, बड़े कीते, बड़े कीते, थोड़े नहीं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु थक हार के मैं तेरी शरण आया, क्योंकि इतनी ते मैनू समझ आ गई जो मैं कीता इस नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। या ते मनुख कह देवे मेरे दिते दान नाल भगवान मिल गए तो चलो गल मन लेंदे, मेरे कठे कीते हुए ज्ञान नाल भगवान प्रगट हो गए तो चलो ये ज्ञान उसकी कीमत हो गई, मेरी कीती हुई सेवा करके गुरु प्रगट हो गया तो लो सेवा कीमत हो गई, मन लेने। सुने हुए कीर्तन करके किधरे मन नू निराश भी ना कर लेना, ते इत्थे लौंग आइलैंड पिछे जद मैं तीन दिन कथा की थे, एक सज्जन मैनू कहण लगा, बड़ा सियाणा और सेठी साहब उन्हां दे कोल ही बैठा सी, कीरत सिंह उन्हां, मैनू कहण लगा थोड़ा थल्ले लैके गल नहीं कीती जा सकदी। मैं कहा थल्ले लैके गल होई तो वह परमात्मा दी है ही नहीं, वो तो ईश्वर दी है ही नहीं, थल्ले लैके जिहड़ी गल है वो तो सारा दिन चलती रहती है, घर दे चलती रहती है, बाजार दे चलती रहती है, हर थां ते चलती रहती है, ये थल्ले लैके गल होई। कहने लगे फिर इस नाल ते तालमेल नहीं बैठता। तो मैं कहा फिर जगत दे ए अवतारी पुरुष, खैर अगों ते उसने गल नहीं की थी, पर मैं विवेकानंद नूं पढ़िया सी ते उह कहिंदा है ये जिहड़े अवतार ने ना समय तो पहले आ जांदे ने, जद आंदे ने इन्हां नूं कोई सुनन वाला नहीं हुंदा, समझण वाला नहीं आउंदा, ते जद किधरे कोई एक कद सुनन वाला समझण वाला पैदा हुंदा उदों हुंदे नहीं। मैं हैरान होया उस महापुरश दे बोल पढ़ के, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਡੰਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਡੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੋ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਤਨੇ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਵਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਐ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਇਤਨੇ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੱਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਣ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਗਏ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਤਨ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਖੇਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚੋਂ ਦੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अज ते मैं उसकी झलक देखी नहीं, ये भी जान लगिया ने, अजे तो मैं करिश्मा देखिया ही नहीं। दरअसल ये दो अखां बंद होवन, इस तों पहले एक तीजी अख खुलनी चाहिए जिस नाल परमात्मा दिखाई देता है। पर होंदा कि वो तीजी की खुले दो भी बंद हो जाती, कर्म करदे आ करदे आ। कर्म की सफलता यही है वो तीजी अख खुले, ये दो बंद हो गई, तीजी ते खुली कोई नहीं। बाबा फरीद इसका जिक्र पै करते हैं, बुढ़ेपे ने मेरे पैर नाकारा कर दिते, इन्नी निक्की जंगी है थल डूंगर बोयम, इन्ना छोटिया जंगा नाल पैरां नाल, मुल्तानी भाषा जंगा कहने पैरां, इन्ना निक्किया निक्किया जंगा नाल मैं ते पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, डूंगरां दी बुलंदी नूं नाप लैंदा सी, इन्नी निक्की जंगी ए थल डूंगर बोयम। अज फरीदे कूजड़ा सैकोआ थेम, कोल पे है कूजा, कूजू करना है नहीं चुक सकता, कोल पे है मेरे। पहाड़ां ते चढ़न वालियां ए लत्तां दो कदम नहीं चल सकदियां, बुढ़ेपे ने मेरे पैर खा ले, बुढ़ेपे ने मेरे दंद ले लेने, से सुनियर बह गए, बुढ़ेपा मेरे कन भी ले गए, उच्चा सुनन लग गए, बुढ़ेपा मेरी जबान भी खा गया, लड़खड़ा गई है जबान। तो तरला पै लेंदे ने, ऐ बुढ़ेपा मेरी अखां रहण दे, जोत घटन लग पई सी, रोशनी घटन लग पई सी, अजे तो मैं खुदा नूं देखिया ही नहीं। ते खुदा नूं देखना की है, सारा संसार जितने चिर तक खुदा दा रूप ना दिखाई दे कोई खुदा दे दर्शन नहीं। कहिंदे ने सानू गुरु नानक दे दर्शन होए, सानू कृष्ण दे दर्शन होए, इस तरह दे भगत मैनू बहुत मिले ने, लेकिन आम बंदियां नाल व्यवहार उन्हां दा बहुत गंदा, उंज कृष्ण जी दे दर्शन होए। सानू गुरु नानक दी झलक मिली है और उंज बंदे नाल व्यवहार इंज जिवें कसाईयां वर्गा, उंज गुरु नानक की झलक मिली नहीं। जितने चिर तक सारा संसार गुरु का रूप ना दिखाई देवे कोई दर्शन नहीं। ए विस संसार तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खान का, जा रहे मस्जिद च मुसलमान खुदा दी झलक वेखण वास्ते, जा रहे मंदिर दे च हिंदू भगवान दा रूप वेखण वास्ते, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खान का, हर कुजा जा में मोहब्बत दीदम सरशारस, मैं ते जिधर देखदा सारा संसार ही खुदा दी मस्जिद बन गया, सारा संसार ही भगवान दा घर है, केड़े मंदिर दे जावे, सारा संसार ही हरी मंदिर है, केड़ी मस्जिद दे जावा, ये सारा विश्व मंडल ही खुदा दी मस्जिद है। भगत कबीर ने इसनु दूसरे ढंग नाल भी बयान किया है, देही महजिद मन मौलाना सहज ने माज गुजारे, केड़ी मस्जिद दे जाना है, देही मस्जिद बन गई है, केड़े मौलवी दे पिछे नमाज पढ़नी है, मानी मौलवी बन गया। और जिस दिन काया मस्जिद बन जाए सारा संसार मस्जिद बन जाता है, जिस दिन काया देवल बन जाए सारा जगत देवल बन जाता है, कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति। कबीर कहंदे मेरी काया मस्जिद बन गई है, पीपा कहंदे मेरी काया हरिमंदर बन गई है, हरि प्रगट हो गया हरिमंदर, खुदा प्रगट हो गया मस्जिद। देही मैजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे, तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, मनुख ने अज तक कर्म बहुत कीते ने और रोज कर रहे हैं। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, प्यारे इन बिद मिलन न जावे, इस नाल ते खेड नहीं बनेगी। मैं किए कर्म अनेका, हुण अनेकां कर्मां दी तफसील पढ़ी, उस शब्द दे ते पाठ भी है, पूजा भी है, तीर्थां दा रटन भी है, दान भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ सारा शब्द ही है। पाठ पढ़े और वेद विचारे, निवल भयंगम साधे, पंच जना से संग न छुटके, अधक अहम बुद्ध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं कहिए कर्म अनेका हार पर्यो, स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरो बनवाई तड़ती रत, सब धरती भर में दुबदा छुटके ना। सारे कर्म जो धार्मिक जगत विच कीते जाने, शब्द विच गिनती कर दे, ए भी मैं कीता, ए भी मैं कीता, ए भी मैं कीता, ए भी मैं कीता, किसे कर्म विचों तेरी छाप नहीं मिली, किसे कर्म विच मैनू रस नहीं आया, किसे कर्म विच प्रकाश नहीं मिले। फिर अखीर विच इंज भी कहने, रहाओ दी पंक्ति यही है, मैं किए कर्म अनेका, इन्हां कर्मां नाल मिलाप नहीं है। तो फिर वो केड़ा कर्म है, इन्हां कर्मां तो अलावा और केड़ा कर्म है? सत्संग दे चाणा कर्म है, कथा कीर्तन करना कर्म है, कथा कीर्तन सुनना कर्म है, दान पुन करना कर्म है, तीर्थां दा रटन कर्म है, घट बोलना भी एक कर्म है, इसे नूं मौन कह सकदे हां। कम आवाज हरगिज ना बेनी खजल, शेख सादी साहब कहते हैं घट बोलन वाला बंदा हरगिज खजल खुआर नहीं आता, अपने ते बथेरियां जिम्मेवारियां नहीं चुकता। कम आवाज हरगिज ना बेनी खजल, जवै मुश्त बेहतर यक तो उदय गिल, गिल कहते हैं मिट्टी नूं, जवै जौदा दाना। साधी कहते ने एक गल आख बावे जौ दे दाने वर्गी हो, छोटी सही पर होवे मुशक कपूर वर्गी, उस गल दे कुछ महक हो, सुगंध हो। एक ही तू बोले, तेरी जबान चले और तू गल्लां दा ढेर ला देवे और सारा ढेर मिट्टी दा तोदा होवे। जवै मुश्क बेहतर यक तो उदय गिल, एक गल आख भावे जौ दे दाने वर्गी छोटी होवे पर होवे मुश्क कपूर वर्गी, ते जे उस गल दे च खुशबू नहीं ते छड, वो ते मिट्टी दा तौदा है। गुरु नानक दा वाक मैनू चेते आ रहा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, कुंगू की काया रतना की ललता, अगर वास तन सास, अठसठ तीरथ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास। ऐसा मत दे च विकास पैदा होया है, खेड़ा पैदा होया है, खुशी पैदा हुई है, काया केसर वर्गी हो गई। केसर नो भारत दे च पवित्रता दा चिन्ह मनदे ने, केसर दा टिक्का लाना। दूर क्यों जाइए, इस नूं फोका कर्म कांड ना समझ लेना, व्यर्थ दी गल ना समझ लेना। बाबा बुढ़ा जी पंज पातशाहियां नूं ना तिलक लाया, तिलक ते केसर दा ही लाया जांदा सी, ये भी मैं अर्ज करदे आं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हजूर साहब दे केसर दे छिट्टे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते मारे सी, केसर दे छिट्टे पत्रियां दे। केसर नूं पवित्रता दा एक खास अंग मनिया गया। भारत दे सिर्फ ये कोई 50 एकड़ जमीन दे छोंदा है, और किधरे नहीं, कश्मीर दे पंपोश एक छोटा जिहा कस्बा है, उत्थे एक जमीन है, उत्थे होंदा है, दास ने देखा। आले दुआले बड़े तजर्बे किते ने इहनूं बोण दे, नहीं होया, किधरे भी नहीं सुनिया। स्पेन दे च भी आउंदा है, पर सारे भारत दे सिर्फ कश्मीर दे च, और कश्मीर दा एक छोटा जिहा कस्बा पंपोश उत्थे आउंदा है, और किधरे नहीं। केसर एक फुल, उसके जड़ा मकरंद है वो केसर है और काफी महंगा। प्राचीन काल तो इसे दा ही टिक्का देंदे रहे ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਖੁੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਖੇਗਾ ਸੀ ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਖੂਨ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਆਈਆਂ, ਮਿੰਜ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਸੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੂਨ ਹੱਥ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਠ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਰਾ ਫਾੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਰਾ ਫਾੜੀ ਕਰੀਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਟਰਾਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਟਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰਤਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਨਿਰਤਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਟਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਵ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੱਚ ਨਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਟਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਉਸਦਾ ਨਿਰਤ ਹੈ, ਨਾਚ ਹੈ। ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਹਿਰਸ ਕਰਾਂ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਤ ਉਸ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਤਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੇ ਬੀ ਨਾਮ ਬੀ ਕਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਤਲਬ, ਕਿ ਆਂਖ ਕਾ ਨੂਰ ਦਿਲ ਕਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਦੁਆ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸੱਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏਗੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पर दिल तो ओही गल निकल दी है दिल जिस तो प्रभावित है, वरना नहीं। जिस तो मैं प्रभावित नहीं हाँ, वो मेरे दिल का हिस्सा नहीं है, मेरी याद का हिस्सा नहीं बन सकता। जिस तो मैं प्रभावित ही नहीं है, बार बार भुल जावांगा। लोकी परमात्मा नु याद करते ने पाठ करके, पूजा करके, कीर्तन करके, कथा करके, वाजे वजा के, साज खड़का के, सब कुछ करके। पुत्र नु याद करना है, वाजा वजाण दी लोड़ है। मित्र नु याद करना है, कथा करन दी लोड़ है। परिवार नु याद करना है, धन संपदा नु याद करना है, फिलसफा घोटन दी लोड़ है, लोड़ ही नहीं। उसका प्रभाव है मन ते, याद आउंदी। बिना वाजिया वजाया धन याद आउंदा है, बिना तबलिया खड़काया परिवार याद आउंदा है, बिना फिलसफा घोटिया मित्र याद आउंदे ने। घोटते रहिए फिलसफा, करते रहिए कथा कहानियां, परमात्मा याद का हिस्सा नहीं बनता। उस तो मन प्रभावित ही नहीं। जिस तो मन प्रभावित है दिल उसनु याद करेगा, और जिसनु दिल याद कर रहा है उदी गल फिर दिल तो निकलेगी। अगर दिल तो निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो मैं फिर अपने नुक्ता निगाहते आवां। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, केसर वर्गी काया हो गई, केसर लाण दी लोड़ ही नहीं रही। कुंगू की काया, रतना की ललता, जवान रतना दी खान बन गई है। भाव एक एक बोल जिस तो कई रतन कुर्बान किए जा सके, बेशुमार रतन कुर्बान किए जा सके। रतना की ललता अगर वास तन सास, उदे स्वासां दे चंदन दी महक हो जाएगी। तरह तरह दे अतर सेंट उदे स्वासां च आउणगे। तखत पटना साहब में इस दे अर्थ कीते अज तो कोई 22-23 साल पहले, लड़ीवार कथा हुंदी है गुरबाणी दी उत्थे, जपजी साहब तो लेके रागमाला तक चल रहे हैं। जिन्हां दे नाल दास सी ये पंक्तियां आईयां लड़ीवार कथा दे च, तो मैं इन्ना ही आख्या उन्हां दे कर्मां दे च रब्बी महक आउंदी है, सुगंध आउंदी है। ये अर्थ करके अगे चले गए। संत करतार सिंह जी जिन्हां ने पटना साहब की सेवा कराई, हट साहब गुरुद्वारा बनाया, बेबे नानकी का स्थान भी उन्होंने बनाया, बेर साहब की सारी सेवा उन्होंने की थी। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद दोबारा दरबार साहब ते सोना भी उन्होंने लगाया, और डूंगी बड़ी सांझ सी, हर साल अलवर भी समागम ते पहुंचते रहे। कोई 3-1 साल गुजर गए ने चलाना कर गए, नहीं तो कदी गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरपुरब ते वो गैराजरी करते ही नहीं सन, तख्त साहब ते ही आते सन पटना साहब। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो भी बैठे सन कथा के स्रोतियां। कथा की समाप्ति तो बाद मेरे कमरे च आ गए, कहने लगे मस्कीन जी मेरा दिल बहुत दुख है। मैं क्यों? अगर वास तन सास, तुसी ये कह कर्मां दे सुगंध आ गई, महक आ गई। मारव जो थे कि अंग का जिक्र पै कर दें, रतना की ललता, जवान रतन हो गई है, काया केसर हो गई है। अगर वास तन स्वास, स्वास क्या है, कर्म नहीं क्या, उथे स्वास पे कहते हैं, श्वासां दे खुशबू आ गई। ये अर्थ मैनु कहन लगे या तो थोड़ा मन नहीं मनता कि श्वासां च खुशबू किस तरह हो सकती है। मनुख चाहता है मेरे मुंह चो खुशबू आवे, बदबू नहीं आनी चाहिए, मनुख चाहता है। और दूजे नूं बहुत बुरा लगता है मुंह च बदबू आउंदी, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਇਹ 80 ਸਨ 80-81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 80 ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਏਟਾ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਵਨ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਜਿਆ ਉਸਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 25-26 ਘਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਹਿਮਤ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਐਵੇਂ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਨ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਬਟ ਡਾਲੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁੰਮਨਾਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, उपस्थिति का पता ना चले, मेरी मौजूदगी का पता ना चले। लेकिन एक दिन उसने जबान खोली संगत दे, आखन लगे थोड़ा बहुत धन्यवाद, मैं कल चले जाना। इस संगता ने किया, क्यों? किसी ने कुछ कह देता है, क्यों जाते रहो? कहने लगे सदा ही आ गया तो हुण की रहना, सदा ही आ गया। दो चार जड़े बजुर्ग सन उन्होंने कुछ माड़ी जी समझ आई, कहने लगे चले जाना, हां संसार को ही चले जाना। तो फिर सारे मिलके कहन लगे, महाराज फिर थोड़ी देही दा दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए। भारत दे च जिन्हां नूं व्यंगम या संत कहिंदे ने पानी दे डोब देंदे ने, गंज डड़वाड़े दे नेरे गंगा लंघदी है, आखो ते उहदे च प्रवाह करदे आ, क्योंकि बहुते संतां दे शरीरां नूं इस तरह ही करदे ने। दास संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए, हुक्म करो। कहन लगे ना दास संस्कार करना है ना जल प्रवाह करना है, फिर की करना है? अंदरों सोचे शायद कहिंदा होवेगा कब्र बनाओ। कहन लगा मैं अपना दास संस्कार आप करांगा। तो पता है कस्बे च चर्चा की फैल गई, कल खुदकशी करेगा, आत्महत्या करेगा। कहिंदा जो है मैं अपना दास संस्कार आप करांगा। प्रबंधकां ने यह भी कोशिश की थी किधरे गुरुद्वारे ना करे, चिता बना के ते आप ही अपने आप नूं जला गए, ये काम किधरे गुरुद्वारे ना हो जाए। सवेरे सुखमनी साहब का पाठ होया, उतों दियां गुरुद्वारियां दियां बहुत सारियां दियां मर्यादावां सवेरे पाठ होंदा, आसा दीवार का कीर्तन होया, मिल के संगतां कर दियां सन। अरदासे तो बाद सारियां नूं फतेह बुला के ना ते महाराज दे अगों लेट गया। बंदा सिर्फ तहमद सी, बदन सारा नंगा, नाभी दे चों अग निकली, उहदी नाफ दे चों पड़िया। ते मैं सीस नूं योगा अगन कहिंदे ने, कबीर ने भी जिक्र किया है, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सदाया उत्तराखंड। बर्फानी पहाड़ा च जेडे योगी रेंदे सन ते देख लेंदे सन, अंतम समा आया इसे ही अगन नाल अपना दास संस्कार करदे सन। मैं जो अर्ज कर रहे हैं अत कथनी नहीं, हजारा साल पुरानी घटना भी नहीं है, होना ही होया 80-81 की घटना है। भारत के सारे पेपर ने छापी और फ्रंट पेज ते छापी, तस्वीर के नाल छापी। खुदकशी करेगा तो करीबन करीबन सारी संगत भी कठी सी और हिंदू वीर भी आ गए भी, तो किधर खुदकशी करेगा? पुलिस भी पहुंची सी, यह भी मैं अर्ज करा। एक फोटोग्राफर रब दे ने नाल ही उसकी दुकान सी तमाशबीन की तरह, वह भी आ गया। सारिया के सामने करिश्मा उन्हों लकड़ा कट्ठिया करे तो रोके कोई नाभी चो अग निकली और चारों पासे सुगंध फैल गई, खुशबू अजीबो गरीब खुशबू। और उस अग का प्रकाश भी अजीबो गरीब, यानी चानना इस तरह जिमें दुध का रंग होंदा ना चिट्टा, इस ढंग का चानना, दूधिया चानना उस अग्नि ना। सारा शरीर जल गया, राख भी कोई नहीं, सारा शरीर जल गया, थले दा कारपेट नहीं जले। उस तरह यह हुण दी घटना, थोड़े चिर वो खुशबू कोई 3-4 महीने उस अस्थान विच रही है। ते मैनू संत करतार सिंह लै गए, कोई 13-14 दिन हो गए सन। कहन लगे सूंगो कि कोई सेंट नहीं छिड़किया गया, इतने कोई फुल नहीं है, इतने कोई अतर नहीं छिड़किया गया, आले दुआले कोई अतर फिरोश नहीं है, किसी दुकान ते अतर नहीं बिकता, कोई सेंट नहीं बिकता, ऐ वेख है की है। इस हादसे का मैं अखबारां थोड़ा जिहा पढ़िया सी और अपनी तर्क बुद्धि करके पढ़ के भी एक पासे सुट दिता सी, चलो हो गई होनी कोई गल। कहने के खुशबू की है, किसे दा अतर छिड़के होया नहीं है, इतने ये की है। मैं किसे दा अतर छिड़के होया भी नहीं है, आले दुआले इस तरह के होर कोई साधन भी नहीं, तो एक फिर रब्बी खेड है। कहन लगे हाँ, उसके स्वासां जो खुशबू सी, वह पुरुष ही ऐसा सी। कहन लगे मैं आउंदा रहा, उसके कोल मैं बैठदा सी, मैनू सुगंध आउंदी सी, मैनू महक आउंदी सी। कदी उसने सेंट नहीं लाया, कोई अतर नहीं लाता सी, खुशबू आउंदी सी, महक आउंदी सी। ये संत करतार सिंह ने मैनू दसिया। मैनू कहन लगे कुछ गैबी खेडां जो वरतदियां ने, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਸ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅਪਜਸ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਫੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। जस हो गया ठीक, अपजस हो गया ठीक, नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक, अपने विचले इन्हें कहते निर्लेप। ये निर्लेप, ये परिवार विच निर्लेप है, संसार विच निर्लेप है, धन संपदा विच निर्लेप है, पर निर्लेप। तीसरा, हुण ये प्रभावित करन लग पे, हुण ये प्रकृति नूं प्रभावित करदा, संसार नूं प्रभावित करदा। ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗਠਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਾਧੂ, ਜਿਸਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼, 16-17 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਬਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। गंज डडवाड़ा उस कस्बे का नाम है, गंज डडवाड़ा, कासगंज ते इटावे दे को, एटा दे कोल, इटावा नहीं एटा, जिला एटा। दिल्ली कलकत्ता जिहड़ा हाईवे जीटी रोड है उस दे उत्ते पैंदा है ए रोड, हाईवे ए जीटी एटा तो लंघ के जांदा है, गंज डडवाड़े तो लंघ के जांदा है। रेलवे लाइन दे उत्ते गंज डडवाड़ा नहीं है, पर जीटी रोड दे उत्ते एक कस्बा है। इत्थे जो है एक घटना घटी, फिर मैंनु कुछ दिन उत्थे कथा करन नु भी मिलिया, और मेरी अपनी जिंदगी दा तजर्बा है, कथा करन दा मैनु उत्थे स्वाद आया। मैनु इंज लग्या जिवें कथा बंदगी है। फिर मैनु बाबे बलवंत सिंह दे बोल याद आए, किसे किसे दिन कथा हो जांदी है, किसे दिन करनी पैंदी है, जद करनी पैंदी है ते खपना ही पैंदा, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और फिर तो उन्होंने इतना खुलासा किया, किसे किसे दिन पाठ हो जाता है, किसे किसे दिन करना पैंदा, वो जो करना पैंदा उते खपना ही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसे किसे दिन नितनेम हो जाता है, किसे दिन करना पैंदा, वो जड़ा करना पैंदा वो नितनेम खपना ही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उदों तो गल समझ च नहीं आई सी, उस दिन मैनू समझ च आई, वाकई किसे दिन हो जाता है, जो हो जाता है उसकी बख्शिश है, जो करना पै जाता अपना खपना ही, और कुछ भी नहीं। जो हो जाता है उसकी रहमत है, उसकी बख्शिश है, तौ प्रसाद है, तेरी कृपा है, तेरी रहमत है, और जो करना पैंदा है खपना ही है। ये करना की पैंदा है, जिस जिस कर्म नाल मेरा अहंकार जुड़ गया है, उही उही कर्म बेरस हो गया, उसे उसे कर्म दे बेरसी पैदा हो गई। मैनु कीते हुए दान तो खेड़ा नहीं मिलिया, उस कुछ ना कुछ मेरा अहंकार है। मैनु कीते हुए पाठ तो रस नहीं आया, उस कुछ ना कुछ मेरा अहंकार है। मैनु कीते हुए कीर्तन तो सुने हुए कीर्तन दे रस नहीं आया, उस कुछ ना कुछ मेरा अहंकार है, लाजमी है। मैं पढ़ रहा बाणी, मैनू कोई रस नहीं आया, इहदे च मेरा मैं मौजूद है जे तू नहीं है। जिस दिन मेरा मैं नहीं आउंदा, रस बन जाता है। यह भी मैं अर्ज कर रहा हूं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते केवल करम भरम सहचेनो धर्म करम अनरागो। उन्हां कर्मां नाल परमात्मा का चिंतन करते हो, जिहड़े कर्म है नहीं भरम, दान भी भरम हो जाएगा अगर अहंकार नाल है, ज्ञान भी भरम है अगर अहंकार है, पूजा पाठ भी भरम है अगर अहंकार है, सेवा भी भरम ही है अगर अहंकार है। धर्म तो उस दिन है जब अहंकार रुखसत हो, वरना भरम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देवाक केवल कर्म भरम से चीनो धर्म करम अनरागो। धार्मिक कर्म की है जो मैं श्रद्धा नाल कीता है, प्यार नाल कीता है। बस दो मिनट मैं होर लेके समाप्ति करा। संबंध जोड़न वास्ते परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नूं प्रीत दित्ती है, इस तो बिना संबंध नहीं जुड़ता है, रिश्ते नहीं जुड़ते। पर ये प्रीत तीन रूप धारण कर जाती है, अपने तो थले दी तरफ जाए तो इनू सनेह कहिंदे ने, बच्चियां नाल सनेह आउंदा। अगर प्रीत थले ना जाए तो बच्चे नूं गोद च लेना बड़ा औखा हो जाएगा, वो बाहां पसारदा रह जाएगा, मां पकड़ेगी नहीं। सनेह ये चाहिदा, नहीं तो बच्चे पल भी नहीं सकते, उन्हां दी परवरिश भी नहीं हो सकती। संबंध जुड़ रहे हैं सनेह करके, प्रीत सनेह बन गई है, और ये सनेह पशुआं दे च भी है, बड़े बड़े खूनखार दरिंदियां दे च भी है, भेड़िया है, शेर नहीं है, बगयाड़ है, और इसे तरीके नाल चीता है, दूजियां दा खून पीण वाले, और अपने बच्चे नूं सीने नाल ला के रख दे, सनेह है। वरना संबंध नहीं जुड़दा, बच्चे पल भी नहीं सकते, फिर ते शेरां दी नस्ल ही खत्म हो जाए। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे ने कुर्बान कीता तिसे वेटों जिन मोह मीठा लाया, हे प्रभु मैं तैथों सदके जाना, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲਨੇ ਸਨ, ਕਿਸਨੇ ਪਾਲਣੇ ਸਨ? ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਿਓ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨੇਹ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਜਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਿਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਨੇਹ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਨੇਹ ਦੀ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨੇਹ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਮੈਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ ਚੌ ਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਸੱਸੀ ਉਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਉਹ ਜਾਤ ਕੁ ਜਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਕਵੀ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਬਥੇਰਿਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੈਲਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਿਮਾਲ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਸੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਣ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਲੈਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੈ ਸਕੇ ਬੋਸੀਦਾ ਮਜਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗੋਇਦ ਇੰਚੇ ਸੂਦ। ਬੋਸੀਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਜਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਕੁੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਪੈ ਸਕੇ ਬਹੁ ਸੀਦਾ ਮਜਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗੋਇਦ ਇੰਚੇ ਸੂ। ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਜਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਈ ਸਗੇ ਦਰ ਕੂਏ ਲੈਲਾ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਰਫਤਾ ਬੋਧ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰੋਕਾਂ ਸਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕੇ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, परमात्मा दे घर तक होवे जो दी से गुर सिखड़ा तिस नेव नेव लागो पाए जी। हालात ते हो जांदे जिस नाल प्यार है उसदे हर वस्तु नाल हर अंग नाल प्यार पै जांदा है। बराबरी जिथे है प्रीत बराबरी दे तल ते आ जाए तो प्रेम बन जांदी है। मैं आप दी ग्याथली अर्ज करा नंद लाल भी अछूते नहीं रहे सन। उन्हां दे कोल एक ऐसा शायर आया कहन लगा मैं अपनी लिखत सुनानी है लिखिया ने मैं कोई नज़मां। ते शायर नू शायर तो दाद मिले उन्हूं रूहानी खुशी आउंदी है। दूजे भावें सिरे ला के सुनदे रहन उन्हूं रूहानी खुशी नहीं आउंदी। ये भी मैं अर्ज कर देना कोई संगीतकार जद संगीत की धुन अलापे तो कोई चोटी का संगीतकार उसनू दाद देवे यकीन जाणो उसनू रूहानी खुशी मिलेगी। दूजिया के रास्ते सिर हिलाण नाल कुछ भी नहीं होगा उन्हूं प्रसन्नता नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज कर देना क्योंकि उसनू तो पता ही नहीं ठीक है रस सिर ते हिला रहा है। मैं देखना कई गुरुद्वार कहने जी राग च कीर्तन करो राग की कोई समझ भी कोई नहीं कहते राग च कीर्तन करो। और जे पुछो बिलावल दे केड़ियां सुरां लगदियां किन्नियां तीबर ने किन्नियां कोमल ने कुछ भी पता नहीं कोई ज्ञान नहीं। राग सुनना है जी साधारण रीत राग और साधारण तो साधारण रीत दे भी राग है। ये भी मैं अर्ज कर दिया सत सुरां दे जो गाया जा रहा है राग किसी किसी राग नालों संबंधित है पर खैर एवें विचकार गल आ गई है। शायर शायर नू सुना के प्रसन्न आउंदा है कहन लगा नंद लाल जी तुसी महान शायर और गुरु गोबिंद सिंह की प्रसन्नता दे पात्र में लिखे थानू सुनाना है। भाई साहब कहंदे अच्छा सुना की लिखे है कहंदा लैला मजनू का किस्सा लिखे है थानू सुनाना है। और सिर्फ एक एक सफा सुनाना है दो नज़मा लैला दे संबंध दो नज़मा मजनू दे संबंध। भाई साहब कहते ठीक है सुन दे सुना। हालांकि ग्रंथ बहुत वड्डा सी पहले उन्हें दो नज़मा मजनू दियां सुनाइयां भाई साहब की समाधि लग गई जुड़ गए। ते फिर वो शायर कहता भाई जी हुण मैं थानू लैला की गल सुना लगा। और लैला की गल उसने की सुनानी सी भाई साहब बोल पे उत्थे भाई साहब के अंदरों नजम निकली है और दीवाने गोया दिच दर्ज है। भाई नंद लाल कहते ने मगो अज हाले लैली लैला की गल हूं मैनू ना सुना मैं नहीं सुननी। मगो अज हाले लैली बादले शौरी दाए गोया कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजा। तू मैनू मजनू का किस्सा सुनाया मैं अपने होश गवा बैठा जे तू हूं लैला की गल सुनाई मैं अपनी जान गवा बैठा मेरे प्राण जाते रहने ना सुना मैं नहीं सुन सकता। कमाल की गल मजनू की गल सुन के कोई अपनी सुरत खो देवे ते गुरु नाल जुड़ जाए अपने होशोवाश खो देवे ते गुरु की गल सुन के भी अंदर जज्बे ना उमड़न। मजनू की गल सुने कोई तो रब नाल जुड़ जाए तो रब की गल सुन के भी कोई रब नाल ना जुड़े अवस्था का भेद और की है। मगो अज हाल लैली बादले शौरी दाए गोया कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। मैं तो मजनू का किस्सा सुन के ही पागल हो गया अपने होश गवा बैठा हूं तू लैला का किस्सा सुनाया कि जान नहीं रहनी खामोश हो जा बस बहुत हो गया तू मैनू बहुत सुनाया इतनी ही मेरी ताब सी इतनी ही मेरी जो है समर्था सी। यह है एक प्यार दी दुनिया इश्क दी दुनिया इसनू इश्क हकीकी भी कह देंदे ने इश्क मिजाजी भी कह देंदे ने। इश्क हकीकी परमात्मा नाल ईश्वर दे नाल एक रिश्ता प्रेम दा इहदे च बराबरी हो जाती है। यह भी मैं अर्ज कर दें मीरां बराबरी दे रही है बहुत सारे सूफी बराबरी दे रहे हैं किधरे किधरे जे सिख ना गुरु नूं बराबरी देवे आखे नहीं तू वड्डा है फिर भी गुरु सिख नूं बराबरी दे देंदा तू मेरा ही रूप है अस एक में का कोई फर्क नहीं। प्रीत अपने तो उच्चे दी तरफ चलाया है, दिल दिमाग मने नहीं, तू महान है तो प्रीत श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा जोड़ दी है, प्रेम जोड़ता है, स्नेह जोड़ता है। प्रेम नाल कीता कर्म, स्नेह नाल कीता कर्म, श्रद्धा नाल कर्म रस बना देगा। स्नेह नाल दुध पिलाया जा रहा है बच्चे नूं, यकीन जानो एक रस है, मजबूरी च पिलाया जा रहा है, आया भी पिला सकती है और भी खिड़ा सकती है बच्चे, पर स्नेह दी मारी हुई मां भी बच्चे नाल खेड रही है ते खिड़ा रही है, मजबूरी दी मारी हुई आया भी खिड़ा रही है ते खेड रही है, कि दोनों एक आख हो गए कथा ही नहीं। स्नेह ने कर्म दे रस पैदा कर देता है, प्रेम महारस पैदा कर देता है, श्रद्धा ओ रस जो बयान तो भी परे है। दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, और कई दालां बनाइया ने, कई सब्जियां बनाइया ने, नमक एक देच भी नहीं पाया, सब बेरस, सारिया सब्जियां बेरस, सारिया ही दालां बेरस, एक नमक तो बिना। खीर बनाई है, सेवियां बनाइया ने, और काफी पकवान बनाए ने, सिर्फ शक्कर नहीं पाई, सब बेरस। दान प्रेम तो बिना बेरस है, ज्ञान श्रद्धा तो बिना बेरस है, सेवा प्रेम तो बिना फिक्की है, कुछ भी कर्म धार्मिक प्रेम तो बिना सारे बेरस है। ये भी मैं अर्ज कर दें, चलो खाली खंड भी मुंह च पा लिए मिठास आ जाता है, नहीं सेवियां ते ना सी, नहीं खीर ते ना सी, कल्ला प्रेम भी आनंद बना देता है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तिप्त है आगाए, और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ते ऐलानिया कह देता, साच कहो सुन ले हो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक सवैया पातशाह दा बड़ा कीमती है, रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुवे को रोवत ग्राम की नारी। रो रहा है अपनिया ही कोई लोड़ा लेके, अपनिया ही कामनावा लेके रोंदा गुरु दे अगों पे है, पर रोंदा पे है अपनी गर्ज नु मुख रख के, गुरु दी कोई चाहत नहीं। ते सतगुरु कहंदे ने इस तरह दे रोने दे उते रब रीज पवे तो मुवे को रोवत ग्राम की, लोकी मुरदियां नु भी ते रोंदे ही ने उरकी। रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुवे को रोवत ग्राम की नारी। कीर्तन ते जो रीज परे ता कीर कपोत पुकार उचारी। ए कबूतरा कीर्तन कर दिया पईआं ने, कोयलां कर दिया पईआं ने, बुलबुलां चह चहा रही नगमे गा रही, गुस्ताखी माफ। बेरसियां ने सेवियां, ए खीर भी अगर शक्कर नहीं है। सारियां सब्जियां बेरसियां ने, सारियां दालां बेरसियां अगर नमक नहीं। प्रेम तो बिना कीर्तन, प्रेम तो बिना कथा, प्रेम तो बिना पाठ, प्रेम तो बिना मथा टेकना, प्रेम तो बिना सेवा, प्रेम तो बिना ज्ञान, प्रेम तो बिना दान, सब फिक्का है, कुछ भी नहीं है। इस वास्ते लोग थक जाते हैं, बड़ा दान किया कुछ भी नहीं, बड़ा ज्ञान इकट्ठा किया कुछ भी नहीं। रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुए को रोवत ग्राम की नारी। कीर्तन ते जो रीज परे ता कीर कपोत पुकार उचारी। नावे दादर मोन सो बिछह बानर बंदर बास बनारी। मेंढक हर वक्त गंगा चनारे है। सारे द्रख मोनी जी महाराज ने चुप ने मौन धारण किया है, ये नाल ही रब मिलता है। मोनी जी महाराज ने सारे द्रख्त मोनी जी महाराज बानर बंदस बास बनारी। सारे बंदर विचारे जंगलों च ही रेंदे ने, ये जंगल दे चरण नाल मिले। नावे दादर मौन सो ब्रिच है बानर बंदर बास बनारी। प्रीत की रीत की लेस बिना सिख पंडित गावत जावत हारी। बिना प्रेम दे लेस तो, बिना प्रेम तो ये सारे कर्म फिक्के कुछ भी नहीं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका हार परयो स्वामी के द्वारे। दीजे बुद्ध विवेका, हिरदा जिसनु बार बार याद करे कि मन जिस तो प्रभावित है, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है और प्रेम हर कर्म दे रस बना देता है। मत्था टेकना भी रस हो जाता है, पाठ करना भी रस हो जाता है, गुरुद्वारे आना भी आनंद हो जाता है, सेवा करनी भी रस हो जाता है, संगतां दे दर्शन भी रस हो जाता है, गुरु कोल बैठना भी आनंद हो जाता है, गुरुद्वारे आना भी आनंद हो जाता है, हर कर्म दे रस ही रस पैदा हो जाता है। सतगुरु रहमत करन ये जो समागम गुरमुख परिवार ने अपने घर रचे है, कथा कीर्तन दे और सेवा दे जो प्रवाह चले ने, सतगुरु इस दे च रस पैदा करन, पढ़े सुनन दे च रस पैदा करन, उन्हां दे उदम दे च रस पैदा करन, ताकि जगत ते आया सफल हो सके। इतने विचारां प्रवान करनियां। दास ने 11:30 गुरुद्वारा ब्रिज वाटर दे च हाजरी भरनी, इस वास्ते दास जावेगा क्योंकि अजे गए ने। मनजीत सिंह होना ने ले मनजीत सिंह करना नहीं। अच्छा हूँ समाप्ति होगी सारे दा, हार्दिक तौर ते धन्यवाद। दास ने ब्रिज वाटर हाजरी भर के 2 दिन लई फिलाडेल्फिया जाना है, अज रात ते कल, ते फिर दास वापस जा रहा है इंग्लैंड होंदे होया इंडिया वापस जा रहे हैं। 2-2.5 हफ्तों का प्रोग्राम दास का इंग्लैंड दे च है, ते फिर वापस जो है दास पहुंच रहे हैं इंडिया। बाकी 8-9 महीने दास उत्थे होंदे, गर्मियां दे जब दिन आउंदे ने, कोई शरीर भी मेरा ऐसा है और बाहर दियां संगतां भी प्यार कर दियां ने, 3-3.5 महीने लिए दास बाहर आ जांदा है, 2 मई, 3 जून, 3 जुलाई या कई दफा अगस्त तक पूरा, या जून निकलदे हैं कई दफा तो सितंबर तक वापस पहुंच जाइए। 8-1 महीने दास भारत की सेवा करते रहते, बाकी बाहर दियां संगतां फिर सतगुरु ने नदी नाव संजोगी मेले कराए। अगले साल जिंदगी रही आप दे दर्शन करांगे। बार बार सारियां दा धन्यवाद, ते हो गई भूल चुका लई क्षमा की याचना, क्योंकि हुक्म होया सी गैनी अमरजीत सिंह ने भी कथा करनी है, पर वो हुण अरदास करनगे ते आनंद साहब का पाठ गैनी हरनाम सिंह जी चाकर करते हैं। इस तों बाद अरदास गैनी अच्छा बच्चे आनंद साहब का पाठ पढ़ के, क्योंकि दास ने 11:30 हाजरी भरनी, इस वास्ते थोड़ी जी जल्दी आपको क्षमा की याचना, फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु।